जब से आर्यांश दीवा को वापस मिला था तब से वो उसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। ऐसे में आर्यांश के बीते सालों के बारे में जानने के लिए दीवा को सुमन का सहारा लेना पड़ा। सुमन से बात करने पर दीवा को पता चला कि आर्यांश अभी तक अपने गिल्ट से बाहर नहीं आया है। आज भी वो दीवा के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार खुद को समझता था। दीवा ने अब आर्यांश को माफ कर दिया था। उसने सुमन से वादा किया कि वो आर्यांश को उसके इस पछतावे से बाहर निकाल कर रहेगी। सुमन को थोड़ी देर नर्स के पास छोड़कर दीवा आर्यांश से बात करने के लिए बाहर आई। आर्यांश इस वक्त गार्डन एरिया में मौजूद था। दीवा के चेहरे पर बेचैनी के भाव देखकर आर्यांश उसके बिना कुछ कहे ही समझ गया था कि सुमन ने दीवा को सब बता दिया है। क्या क्या बोल रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सुमन माँ ने मुझे क्या बता दिया, दीवा ने अनजान बनने का दिखावा किया। आर्यांश ने सिर हिलाया और तंज भरे लहजे में बोला, तुम्हारे बिना कुछ कहे ही चेहरे पर जो सबटाइटल्स दिखाई देते हैं उससे मुझे सब समझ आता है। कब से मुझसे सब जानने की जिद पर अड़ी हुई की, मैंने नहीं बताया तो उनसे जिद करके पूछ लिया। आर्यांश के सामने अब दिखावा करने का कोई फायदा नहीं था। दीवा ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ तो क्या गलत है अगर मैंने उनसे कुछ पूछ भी लिया तो? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो, तो तुम क्यों छुपाना चाहते हो? बोलते हुए दीवा ने आर्यांश की आंखों में देखा जिनमें एक खालीपन उतर आया था। मुझे कुछ नहीं जानना है, आर्यांश बोला। और अब तुम्हें भी सब पता चल गया है तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी भी खत्म हो गई होगी। अब खुद को मुझसे और मेरे मामलों से दूर रखना। और मैं मना कर दूं तो? दीवा ने भौहें उठाकर चैलेंजिंग वॉइस में कहा। तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें सुमन माँ का ट्रीटमेंट नहीं करने दूंगा, आर्यांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया और वहां से जाने लगा। दीवा आंखें बड़ी करके अभी भी उसे जाते हुए देख रही थी। एक वक्त ऐसा था जब दीवा इस तरह आर्यांश को इग्नोर करके निकल जाती थी और वो अपनी जिद पर अड़ा रहता था। अब वक्त पूरी तरह बदल गया था और दीवा आर्यांश की जगह खड़ी थी। मैं भी देखती हूँ मुझे कब तक इग्नोर करते हो, डर रहे हो ना मेरे सामने अपने दिल को खोलने से? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कैसे हैंडल करना है आर्यांश कपूर, दीवा पैर पटकते हुए बोली और जल्दी से दौड़कर आर्यांश के पीछे जाने लगी। आर्यांश चाहे कुछ भी कहे, दीवा हार मानने वाली नहीं थी। वो जल्दी से उसके पीछे आई और उसने आर्यांश का हाथ पकड़ लिया था। उसकी इस हरकत पर आर्यांश पूरी तरह हड़बड़ा गया था और उसने जल्दी से अपना हाथ दीवा के हाथ से अलग कर लिया। आर्यांश दीवा की तरफ घूर कर देख रहा था। क्यों परेशान कर रही हो दीवा, आर्यांश ने चिढ़कर कहा। बोलते हुए उसकी आवाज़ सख्त और तेज़ हो गई थी जिससे दीवा उससे कुछ कदम दूर हो गई थी। हालांकि ये दीवा ने आर्यांश को स्पेस देने के लिए किया था, लेकिन आर्यांश को अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसने अनजाने में ही सही पर दीवा का दिल फिर से दुखा दिया था। उसने एक नज़र दीवा की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ पलटकर वापस जाने लगा था। दीवा उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक एक नर्स दौड़ती हुई उसके पास आई। डॉक्टर गोयनका, एक इमरजेंसी केस आया है और डॉक्टर की टीम आपकी प्रेजेंस चाहती है। वो ये केस रेफर नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि पेशेंट रास्ते में ही मर जाएगा और आप इस केस को हैंडल कर सकती हैं। प्लीज़ मेरे साथ आइए, नर्स जल्दी जल्दी बोली। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ, दीवा ने जवाब दिया। आप अथॉरिटी से बात कीजिए, मुझे बस आपको बुलाने के लिए कहा गया है, नर्स ने लाचारी से कहा। वो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। दीवा ने हल्के से सिर हिलाया और नर्स के पीछे उसके साथ सीनियर्स के मीटिंग रूम में आ चुकी थी। जो नर्स उसे बुलाने गई थी उसके जरिए दीवा को काफ़ी हद तक स्थिति का अंदाज़ा हो गया था। वहाँ का माहौल काफ़ी गंभीर था। अंदर आते ही दीवा बोली, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ लेकिन पूरा केस हैंडल नहीं कर सकती हूँ। कल को पेशेंट की जान चली गई तो हंगामा हो सकता है, मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ। लेकिन आप मिसेस वर्मा का केस भी संभाल ही रही हैं डॉक्टर गोयनका, और हमें आप पर पूरा भरोसा है, वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने कहा। मैं मिसेस वर्मा का केस नहीं, उनकी सिचुएशन हैंडल कर रही हूँ ताकि उन्हें यहाँ से मुंबई ले जाकर उनकी सर्जरी कर सकूँ, दीवा ने सफाई में कहा। दीवा ने मना कर दिया था, उसके बावजूद डॉक्टर ने उसे मनाने के लिए शांत सौम्य आवाज में कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए 4-5 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा और उसकी कंडीशन इस बात की इजाजत नहीं देती है, उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं आपको अश्योर करता हूं अगर पेशेंट की जान गई तो मैं पूरा मामला अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, डॉक्टर चाहे उसे कितना भी आश्वस्त करें। लेकिन सच तो ये था कि इससे दीवा की इमेज पर भी फर्क पड़ने वाला था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी पेशेंट की जान भी इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती थी। दीवा ने सोचने में कुछ मिनट का समय लगाया और फिर हाँ कह दिया था। वो डॉक्टर की टीम के साथ केस डिस्कस कर रही थी, वहीं आर्यांश मीटिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ था। जब नर्स दीवा के पास आई थी तब आर्यांश वहीं आसपास ही रुक गया था। दीवा का उस वक्त उसकी तरफ ध्यान नहीं गया और आर्यांश ने उनकी पूरी बातें सुन ली थी। आर्यांश जानता था कि दीवा काफी सॉफ्ट हार्टेड है, पहले भले ही वो मना कर दे लेकिन बाद में डॉक्टर के दबाव में आकर वो हाँ कहने वाली थी। ये उसकी इमेज और प्रोफेशन के लिए सही नहीं था। उसके इरादे चाहे कितने भी अच्छे रहे हों लेकिन कई बार ज्यादा अच्छाई भी आपको खतरे में डाल सकती है।
पिछली बार भी दीवा मेडिकल अनफिट होने के बाद सर्जरी की। पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल थी, उसकी जान भी दीवा बचाई, लेकिन फिर भी जब मामला मीडिया के सामने आया तब कसूरवार दीवा को ही ठहराया गया था। आर्यांश उसे दोबारा वही गलती नहीं करने दे सकता था। जैसे ही पूरे केस को डिस्कस करने के बाद दीवा मीटिंग रूम से बाहर निकली, उसकी नजर आर्यांश पर पड़ी। आर्यांश को देखकर दीवा वहीं पर रुक गई थी। उसने उसके साथ सर्जरी अटेंड कर रहे डॉक्टर से कहा, आप ओटी में जाइए, मैं चेंज करके मिलती हूँ। प्लीज जल्दी कीजिएगा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर ने कहा और फिर वहां से चला गया था। उसके जाते ही दीवा आर्यांश की तरफ देखा, वो काफी शांत और गंभीर लग रहा था। दीवा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कुछ कहना है तुम्हें? तुम्हारे साथ कितना भी कुछ गलत हो जाए लेकिन तुम सबक नहीं सीखती हो ना, तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें हर्ट होने पर मजबूर करती है, आर्यांश हैरत भरे लहजे में बोला। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुलकर बोलो, दीवा ने जवाब दिया। अनजान बनने का दिखावा मत करो, तुम ये सर्जरी करने नहीं जाओगी। तुम अच्छे से जानती हो कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके अटेंडिंग डॉक्टर में तुम्हारा ही नाम आने वाला है। इस तरह के केस मीडिया के सामने बहुत जल्दी आते हैं, और तुम क्यों अपनी इमेज के साथ खेलती रहती हो? पिछली बार लाइफ केयर हॉस्पिटल में जो भी हुआ उससे तुमने सबक नहीं सीखा, और ना ही मेरे मामले में जो हुआ उससे कुछ सीख रही हो। मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया उसके बावजूद मेरे आगे पीछे घूम रही हो, सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन दी। अगर सुमन माँ का केस मुंबई में ही हैंडल होना है तो मैं खुद उन्हें मुंबई लेकर चला जाऊंगा, और तुम अभी वापस पेलिंग जा रही हो, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा। बहुत दिनों बाद दीवा को आर्यांश के अंदर वो पुराना वाला आर्यांश दिखाई दे रहा था जो सख्ती से बात कर रहा था, लेकिन हाँ, उस सख्ती में दीवा की परवाह छुपी हुई थी। दीवा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी जबकि आर्यांश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो चिढ़कर बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कुछ समझा रहा हूँ और तुम स्माइल कर रही हो, मैं यहाँ कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ।
हाँ पता है, लेकिन तुम्हें पहले की तरह हक जताते देखकर अच्छा लग रहा है, दीवा उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो आर्यांश ने अपना सिर पकड़ लिया था। मैं तुम पर हक नहीं जमा रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं डॉक्टर गोयनका, तुम्हें ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए, आर्यांश ने झल्ला कर कहा। आर्यांश को आगे समझाने का मौका नहीं मिला, नर्स दीवा को बुलाने के लिए वापस आ गई थी। सर्जरी की तैयारी की जा चुकी थी, बस उसे ही वहां पहुंचना था। दीवा ने नर्स को भेजा और फिर आर्यांश की तरफ देखकर कहा, इस टॉपिक को बाद में कंटिन्यू करते हैं, बाकी मैं तुम्हें तुम्हारे उस सवाल का भी जवाब जरूर देना चाहूंगी कि तुम्हारे इतने हर्ट करने के बाद भी मैं तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूम रही हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने और भी बातें कही हैं, क्या तुमने उस तरफ ध्यान दिया भी या नहीं? आर्यांश दांत भींचते हुए बोला, हाँ दिया ना, पर वो मुझे इतनी जरूरी नहीं लगी कि एक क्रिटिकल सर्जरी को छोड़कर मैं तुम्हें उस बात की सफाई दूं, बाद में मिलते हैं। दीवा ने मुस्कुराते हुए हवा में हाथ हिलाया और उसे बाय बोलकर आर्यांश के मना करने के बावजूद चेंजिंग रूम में चली गई थी। आर्यांश उसे रोक नहीं पाया था। दीवा को मनमानी करते देख आर्यांश ने अपनी मुठ्ठियाँ कसकर बंद कर ली थी। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे क्यों इससे फर्क पड़ रहा है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा है, और ये अपने फैसलों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, जब कुछ होगा तभी इसे अक्ल आएगी। आर्यांश को चिढ़ हो रही थी कि दीवा के मनमानी करने पर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वो वहां से चला गया और सुमन के पास आकर बैठ गया था। हालांकि आर्यांश सुमन का ध्यान रख रहा था, लेकिन फिर भी बीच बीच में उसने ऑपरेशन थिएटर के आगे जाकर देखा। शायद डॉक्टर सही कह रहे थे, केस कुछ ज्यादा ही सीरियस था। जो दीवा पिछले 3-4 घंटे से ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी, क्रिटिकल सर्जरीज अक्सर इतने ही लंबे टाइम तक चलती थीं। रात के लगभग 8 बजे के करीब दीवा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली थी। वो काफी थकी हुई थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में चमक थी। उसका चेहरा साफ जाहिर कर रहा था कि सर्जरी सक्सेसफुल रही थी। डॉक्टर और स्टाफ उसे बधाइयां दे रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। इन सबके बीच आर्यांश दीवा से दूर खड़ा हुआ था। आसपास की भीड़ दीवा के साइड से हटी और वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नज़र आर्यांश पर गई। दीवा चेंजिंग रूम में जाने के बजाय आर्यांश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए आर्यांश वहां से चला गया था। कोई इतना रूड कैसे हो सकता है, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। वो आर्यांश के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे चेंज करके खुद को डिसइन्फेक्ट करना था, इसलिए दीवा चेंजिंग रूम में चली गई थी। लगभग 15-20 मिनट बाद वो वापस लौटी। दीवा जब चेंजिंग रूम का गलियारा पार करके आगे गई तो वहां सामने आर्यांश खड़ा हुआ था। उसे देखकर दीवा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, बात नहीं करनी तो बार बार सामने क्यों आ रहे हो, तुम्हारे रूम में खाना रख दिया है, सुमन माँ ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बाद में उनसे मिल लेना, आर्यांश ने जवाब में कहा। उसने दीवा को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और अपनी बात खत्म करके वहां से चला गया था, जबकि दीवा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आर्यांश उसे इग्नोर नहीं कर रहा था, बस वो उसके चेंज करने का इंतजार कर रहा था। इतनी केयर करता है और फिर कहता है कि इसके आगे पीछे क्यों घूम रही हूँ, दीवा ने सिर हिलाकर कहा। दीवा अपने कमरे में लौटी तो कमरे में खाना और बाकी जरूरत का सामान मौजूद था। आर्यांश जानता था कि इतने लंबे टाइम तक खड़े रहने और ऑपरेशन थिएटर में बिजी रहने के बाद वो थक जाएगी, इसलिए सबसे पहले उसे आराम और खाने की जरूरत पड़ेगी। आर्यांश ने पहले उसके लिए सारा इंतजाम कर दिया था। दीवा ने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि उसे नींद आ गई थी। दीवा को एहसास नहीं था कि वो कब तक सोई थी, लेकिन उसकी नींद तब टूटी जब कोई जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दीवा नींद में जल्दी से चौंक कर उठी। उसने लाइट जलाई और घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। दीवा ने उठकर दरवाजा खोला। उसके सामने आर्यांश खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में लाचारी के भाव थे। इतनी देर रात को उसे इस तरह अपने सामने देखकर दीवा को बहुत अजीब लग रहा था। प्लीज मेरे साथ चलो, आर्यांश ने कहा और दीवा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने सडन एंडिंग दी है। आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि आर्यांश इतनी रात को दीवा के पास क्यों आया है और उसे कहाँ लेकर जा रहा है। आइडिया हो गया होगा, आप खुद ही समीक्षा में बता दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।